ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 17। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। आंगिरा उवाच अपि ते अनामयम् स्वस्ति प्रकृतिनां तथा आत्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तः पुमान राजा च सप्तभिः। आंगिरा उवाच अपि ते अनामयम् स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तः पुमान राजा च सप्तभिः। आंगिरा उवाच अपि ते अनामयम् स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तः पुमान राजा च सप्तभिः। आंगिरा उवाच अपि ते अनामयम् स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तः पुमान राजा च सप्तभिः। आंगिरा उवाच। ऋषि आंगिरा ने कहा अपि क्या ते तुमको अनामयम् स्वास्थ्य स्वस्ति कुशलता प्रकृति नाम अपने राज्य सामग्री का पार्षद तथा सामग्री तथा और आत्मनः अपने शरीर मन तथा आत्मा का यथा सदृश प्रकृति विह प्रकृति के तत्वों से गुप्त आरक्षित पुमान जीवित प्राणी राजा राजा च भी सप्तभिः सात। इसका अनुवाद पढ़ता हूं शिल बहुपाद द्वारा। शिल बहुपाद की तो मेरे पीछे दोहराए। ऋषि आंगिरा ने कहा हे राजन आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो। जब प्रकृति के सातों गुण संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अहंकार तथा इंद्र तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम में रहते हैं तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। इन सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा आरक्षित रहता है। ये तत्व हैं उसका उपदेशक स्वामी या गुरु उसके मंत्री उसका राज्य उसका दुर्ग उसका कोष उसकी राजाज्ञा तथा उसके मित्र। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीधर स्वामी ने भागवत की अपनी टीका में ये श्लोक उद्धृत किया है। साम्य मात्यो जनपदा दुर्ग द्रविण संचया दंडो मित्रम चेतस्यता सप्त प्रकृत्यो मतः राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है, फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, विद्या तथा राजज्ञा और मित्र होते हैं। यदि इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। इसी प्रकार भगवद गीता में बताया गया है कि जीवात्मा या आत्मा महतत्व, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा अर्थात इंद्र तृप्ति के पांचों पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। जब ये सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अतः अंगरा ऋषि ने राजा के स्वास्थ्य तथा उनके सात पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से ये पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में नहीं जानना चाहते, वरना उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। ये सब कुशल से रहते हैं तब मनुष्य सुखी हो सकता है। प्रकरण चल रहा है राजा चित्रकेतु का शोक। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा है कि वृत्रासुर के गुण कैसे आए, कहां से आए, और अब चर्चा शुरू हो रही है उसकी पास्ट लाइफ की। भारत तक हुआ, तेरवा कर देते। तो तेरहवें श्लोक में कहा गया है, उनकी सभी रानियां सुमुखी तथा आकर्षक नेत्रों वाली थीं, फिर भी ना तो उनका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां थीं, ना वे देश जिनका वे परम स्वामी था उसे प्रसन्न करने वाले थे। अब एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगरा नामक ऋषि अकस्मात अपनी इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। चित्रकेतु तुरंत ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और उनकी अर्चना की। उन्होंने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट करी, इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा ने अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गए। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनयपूर्वक नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गए तो ऋषि ने उनकी विनयशीलता तथा आतिथ्य के लिए साधुवाद किया और निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। ये जो श्लोक है ये एक बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं, बड़ा अच्छा संदेश देते हैं कि हमें वैष्णव का, हमें ब्राह्मणों का, हमें ऋषियों का, मुनियों का किस प्रकार से आदर मान और सम्मान करना चाहिए, ये बताया। अब ऋषि जो है राजा से उसका हालचाल पूछ रहा है। श्लोक के अंदर दो तीन शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उनमें से एक है अनामयम। अनामयम का अर्थ लिखा है स्वास्थ्य। इसका क्या अर्थ है, स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ? भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक 51 श्लोक के अंदर भी अनामयम शब्द इस्तेमाल होता है, पदम गच्छन्ति अनामयम। प्रभुपाद जी जो है इसका ट्रांसलेशन में लिखते हैं कष्ट रहित, विकार रहित। आमय, आमय शब्द का अर्थ होता है कुंठा। साधारण भाषा में चर्चा करेंगे तो परेशानी, टेंशन, दुख, तकलीफें वगैरह वगैरह वगैरह। अनामयम का मतलब है कोई कुंठा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जब कष्ट नहीं होगा, कुंठा नहीं, मानसिक रूप से कुंठा नहीं है, शारीरिक रूप से कष्ट नहीं है, तो क्या है, स्वास्थ्य है। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, कि आप स्वस्थ। दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ है कुशलता। स्वस्ति शब्द आपने कहां सुना है? सुना है, सबने सुना है। स्वस्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले सब लोग जो है किसी ना किसी रूप में घर में हवन कराया करते थे, या कोई 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 जैसे कि शादी ब्याह है, कोई घर में फंक्शन है तो पंडित जी आके स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब है आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करी जाती है। तो यहां जो है अंगरा ऋषि जो है आपसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं राजा चित्रकेतु से कि हे राजन, आशा है तुम अपने शरीर तथा मन अपने राज्य पार्षदों और सामग्री सहित कुशल से हो। यहां सात चीजों की चर्चा हो रही है, सात तत्वों की चर्चा हो रही है कि आप किसी का भी हालचाल पूछते हैं तो आपके मुख से क्या शब्द निकलते हैं, क्या क्या पूछते हैं, हालात क्या, कैसे बात करते हैं, पड़ोस में, रिश्तेदारी में क्या पूछते हैं, कैसे हो जी, घर बार ठीक है ना, बच्चे कुशल से तो हैं, पत्नी ठीक है कि नहीं, माता पिता तो ठीक हैं, बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, नौकरी में कोई कष्ट तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब आप कंप्लीट बात जानना चाहते हैं, और वही कंप्लीट बात यहां पर जो है भागवतम में अंगरा ऋषि जो है चित्र केतु से पूछ रहे हैं। ये तत्व है उसका उपदेशक स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष, उसकी राजाज्ञा और उसके मित्र। मतलब जो सात चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं उनके बारे में यहां ज्ञान जो है हर व्यक्ति जानना चाहता है। यही अंगरा ऋषि जो है राजा चित्रकेतु से ज्ञान जानना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक तो है, और सब ठीक ठाक में ये सातों बातें आती हैं। अब इसी को जो है चर्चा करी गई है जीवात्मा के लिए कि आप जीवात्मा के सुख के बारे में जानना चाहते हैं। एक भक्त से पूछा जा रहा है कि आप सुख से तो हैं तो कैसे सुख मिलता है, उसे सुख की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उसका फॉर्मेट क्या है। हम आपसे पूछते हैं कि आप सुख के बारे में बताइए तो आप क्या जवाब देंगे कि सुख कैसे मिलता है। तो भगवद गीता के अंदर पांचवें अध्याय के 13वें श्लोक में चर्चा हो रही है, सर्वकर्माणि मनसा सन्यास्ते सुखम वशी न द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन कार्यान। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वे नौ द्वारों वाले नगर में इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता। इस श्लोक के अंदर चर्चा हुई है दो बातों की, एक प्रकृति को वश में कर लेना। तो प्रश्न यह है प्रकृति क्या है जिसको वश में करना, और दूसरी चर्चा हो रही है कि मन से समस्त कर्मों का परित्याग। अब सब कर्म छोड़ देंगे कि मैं किसी कर्म को करूंगा ही नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। मन से समस्त कर्मों का परित्याग, ये दो चीजें अगर मनुष्य कर लेता है तो वो इस नौ द्वारों वाले नगर के अंदर सुखपूर्वक रहता है। एसी चल रहा है तो सुख किसे मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है ना। तो यहां चर्चा किसकी हो रही है, नौ द्वारों वाले नगर में रहने वाले जीव की, उस जीव को कैसे सुख प्राप्त होगा, उस जीव का सुख की प्राप्ति कैसे है, इस बात की चर्चा है। दिस इज बीइंग सेड। और उसकी चर्चा कैसे है, स्पष्ट कहा है सबसे पहले तो आपको अपनी प्रकृति को वश में करना है। यही चर्चा आज हो रही है प्रकृति के सातों गुण अर्थात संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अहंकार तथा इंद्र तृप्ति के पांचों पदार्थ जब अपने अपने क्रम में रहते हैं। वो क्रम क्या है, क्रम इज कंट्रोल। क्रम का अर्थ यह है कि सारे के सारे पदार्थ जो हैं आपके वश में हैं, आपके कंट्रोल में हैं। जब कंट्रोल में है तभी जो है जीवात्मा सुखी रहता है, अर्थात आपको अपनी प्रकृति को वश में करना है। प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं, मेरी प्रकृति को मुझे वश में करना है, इसका क्या अर्थ है कि मुझे अपनी प्रकृति को वश में करना है, इसका क्या अर्थ है। तो उस प्रकृति में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या, यहां जो सात पदार्थ गिने गए हैं इससे अलावा और कौन से पदार्थ हैं जिनको मुझे वश में करना है। परंतु यहां पर सात पदार्थों के अंदर जो पहला पदार्थ है उसमें बाकी सारे पदार्थ आ जाते हैं। कौन सी चीजें मुझे वश में करनी है, किनका वश में होने से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। इस बात का ज्ञान प्राप्त करना, तो भौतिक प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना है उसकी चर्चा करते हैं कि किससे हमारा शरीर बना है उसकी चर्चा हो रही है। तो यहां जो है भगवान 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में बताते हैं, महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशैकम च पंचचिंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघास चेतना धृति एतम क्षेत्र समासेन सविकार मुदाहृतम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां, मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कार्य का क्षेत्र और उनकी अंतर क्रियाएं विकार कहा जाता है। 24 तत्वों की प्रकृति काउंट होती है, 24 एलिमेंट्स। वो 24 एलिमेंट्स जो हैं कैसे आते हैं और उनका ओरिजिन कहां है, ये चर्चा यहां पर जो है चल रही है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकृति को वश में करके आप सुखी हो सकते हैं। आप मीन्स जीवात्मा सुखी हो सकता है। मन से कर्मों का परित्याग, कर्मों का परित्याग दो तरह से होता है, कर्म को छोड़ देना। व्हाट डज इट मीन, कौन से कर्म को छोड़ देना है, किस कर्म का परित्याग करना है? मन से कर्मों का परित्याग। आप कर्म करते हैं अपने लिए, परंतु जब फल प्राप्ति की बात आई तो कहा जी मैं अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करता हूं, मैंने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया। ये इन्फीरियर स्टेज है, बिगिनर स्टेज है। कर्म के परित्याग का अर्थ क्या है कि मैंने कर्म अपने लिए न करके केवल भगवान के लिए किया है, मतलब मैंने कर्म को मदर्पणम अर्थात भगवान के लिए अर्पण किया है, उन्हीं के लिए किया है, अपने लिए कोई कार्य नहीं किया। जो बात भगवद गीता के 4ठे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि कर्म को अकर्म में देखना और अकर्म को कर्म में देखना, इसका क्या अर्थ है कि मेरा कर्म ही अकर्म है और मेरा अकर्म ही कर्म है, इस बात को समझना। मेरा कर्म ही अकर्म है मतलब मैं जो भी कार्य करता हूं वो अकर्म के लेवल पे होता है, मेरे सकाम कर्म नहीं होता, अपने लिए नहीं होता। अकर्म ही कर्म है मतलब अगर मुझसे कहा जाए कि आप कुछ काम भगवान के लिए करो कुछ काम अपने लिए करो तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ही बात एक्सेप्टेबल है कि मेरा हर कार्य जो है भगवान के लिए ही होना चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मैं अकर्म करता हूं अर्थात जो भी मैं कर्म के फल की इच्छा रहित होकर कार्य करता हूं, वो सारे के सारे कर्म जो हैं अकर्म हैं, भगवान के लिए हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस बात को समझना। तो कर्म के फलों का परित्याग या मन से कर्मों का परित्याग का मतलब है कि मैंने मन के अंदर ये धारणा पक्की कर ली है, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि आई एम एब्सोल्यूटली डिजायरलेस। मेरी भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक संसार, इंद्र कामना, किसी के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। मेरा आकर्षण केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा है और कुछ नहीं। उस लेवल पे अपने आप को लेके आना है और कोई लेवल नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी, मतलब मैंने अपने मन से कर्मों का परित्याग कर दिया कि मेरे मन के अंदर इंद्रिय भोगों की एक इलेश मात्र भी कामना नहीं, कि ये मिलेगा तो मेरे को बड़ा आनंद प्राप्त होगा, ये मेरी ऐसी इच्छा है ही नहीं, कि अगर ये मेरे पास हो तो भगवान की सेवा में कैसे लगेगा, उनकी सेवा में कैसे प्रयुक्त होगा, वहां पे इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, ये कामना रखता हूं, तब मैं किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण रखता हूं। मुझे अगर एक रेफ्रिजरेटर चाहिए अच्छा सा, तो किस लिए चाहिए कि उसमें भगवान के भोग के लिए जो सामान आना है बाजार से उसको रख सकूं, वो मेरी कामना रहनी चाहिए, न कि मेरे को केक चाहिए इसमें स्विच कर लूंगा, पेस्ट्री चाहिए इसमें रख लूंगा, है मेरे को इच्छा खाना है ये चाहिए इसमें रख लूंगा। नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मेरे को मन से कर्मों का परित्याग, मतलब कर्म का अर्थ जहां भी भगवद गीता में यूज होता है वो सकाम कर्म कामना सहित कार्य के लिए यूज होता है, और मेरे को अपने आनंद, अपने मजे, अपने ऐश्वर्य, अपने सुख, अपनी चाहत के लिए कोई कर्म नहीं करना। अब यहां प्रश्न आता है कि जो चर्चा हो रही है सात तत्वों की, और उसके जो है ओरिजिनल कहां है, या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवात्मा या आत्मा महत्तत्व अहंकार तथा पंच तन्मात्रा अर्थात इंद्र तृप्ति के पांच पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। तो इंद्र तृप्ति के पांच पदार्थ क्या है, कौन सी पांच ऐसी चीजें हैं जो कि इंद्र तृप्ति में सहायक होती है, दे हेल्प। हमी जो हमने चर्चा करी 13वें अध्याय के अंदर श्लोक की, तो ये बात समझनी है कि एक मूल प्रकृति है इसको कि भगवान की माया कहा जाता, जो मूल प्रकृति है उसको प्रधान भी कहा जाता। उस मूल प्रकृति से ओरिजिन होता है महत्तत्व का, महान तत्व है, इट्स ए बिग एलिमेंट। उस महत्तत्व जो है वो बनता है ओरिजिन अहंकार का, महत्त्व से अहंकार आता। अब जो अहंकार है उससे आते हैं पंचमहाभूत, पंचमहाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनसे आती है 10 इंद्रियां और 1 मन। तो 10 इंद्रियां क्या हैं, 5 ज्ञान की, कान, आंख, नाक, जिह्वा में रस लेने की शक्ति और त्वचा, और 5 आती हैं कर्म की इंद्रियां, 2 पैरों को 1 इंद्री गिना गया है, 2 हाथों को 1 इंद्री गिना गया है, जिह्वा में जो बोलने की शक्ति है वाक शक्ति जिसे कहते हैं उसे 1 इंद्री गिना गया है, और उपस्थ और गुदा मल मूत्र त्यागने के स्थान को 2 इंद्रियां मिला के 5 इंद्रियां वो होती हैं कर्मेन्द्रियां कहलाती हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और 1 मन। अब इनके साथ आते हैं 5 इंद्रियों के विषय, कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इसको 5 पदार्थों को प्रभुपाद ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, सेंस ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में 5 पदार्थ लिखा है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि 5 पदार्थ क्या है, थिंक कौन सी 5 आइटम हैं जो इंद्र तृप्ति में हेल्प करती हैं, मकान, बंगला, गाड़ी, इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। बट यहां पे चर्चा क्या आ रही है कि आपको 5 पदार्थ का मतलब है इंद्र तृप्ति के लिए 5 इंद्रियों के विषय। ये 5 विषय आपको इंद्र तृप्ति में कैसे हेल्प करते हैं, हाउ डू दे हेल्प, किस तरह से हेल्प करते हैं, और कैसे चेतना खराब होती है इनसे। कान में अगर कृष्ण कथा जा रही है, कान में कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनने को मिल रहा है, तो आपका मन जो है वो ग्रेजुअली भगवान के प्रति आकर्षित होगा। अगर कान के अंदर आपके जो भौतिक संसार से कनेक्टेड चीजें हैं उनके शब्द जा रहे हैं तो आपका उनके प्रति आकर्षण होगा। आप घर से निकले, एक मित्र ने कहा चलो भाई पंजाबी बाग मंदिर चलते हैं, बड़ी सुंदर कथा होती है वहां पर शनिवार की शाम को, बड़े अच्छे कथावाचक आए हुए हैं, आपको कथा सुनाते हैं। कान में शब्द गए, थोड़ा सा मन जो है इस तरफ को लगा, अच्छा अच्छा बड़ी अच्छी कथा होती है वहां चलना चाहिए। वहीं दूसरा मित्र आ गया और मेरे पास 2 टिकटें फिल्म की आज ही लगी है, पहला दिन है, चला चलते हैं, ये हीरो है, ये हीरोइन है, हैं, और बड़े अच्छे फॉरेन कंट्री की शूटिंग है, हैं वो फाइट्स हैं, कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन है, ये है वो है। तो मन में जैसे ये शब्द गए वो कथा गायब हो गई, वो भूल गए, कथा की बात भी चल रही थी, ये बात दिमाग से उतर गई, तुरंत शब्दों ने इंद्र तृप्ति की तरफ आकर्षित कर दिया और व्यक्ति कहने लगा अच्छा अच्छा इसकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, इसकी गाड़ी में बैठूंगा, और तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठ के पिक्चर देखने चला गया। शब्दों ने आपको आकर्षित कर लिया इंद्रियों को आनंद देने वाली स्थिति को हासिल करने के लिए। घर से चले आ रहे थे, मंदिर के सामने से गुजरे, एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए भगवद गीता सेशन कोर्स समथिंग समथिंग लाइक दिस, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भगवान कौन है, वगैरह वगैरह सब चर्चा। तो थोड़ा आकर्षण हुआ है, मुझे देखना चाहिए, मुझे भी अंदर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कोर्स की फीस क्या है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि सुख कैसे मिलेगा, भगवान कौन है, आत्मा क्या होती है, वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो बड़ा आकर्षण हुआ और बगल में ही एक बड़ी बढ़िया सी फिल्म का पोस्टर लगा जो इंद्र तृप्ति की तरफ आकर्षित करती है। तो आप जो है पहले वाले पोस्टर का जो इंप्रेशन दिमाग में आ रहा था वो साफ हुआ और दूसरा इंप्रेशन ज्यादा पावरफुल हो गया और आप उसकी तरफ चल दिए। तो किसने किया इंद्र तृप्ति की तरफ आकर्षण, किसने दिया? इंद्रिय विषय ने। मन का दोष नहीं था, मन को विचलित किसने किया है? उस पोस्टर ने। उस पोस्टर ना होता तो आपके पास उस फिल्म के बारे में आकर्षण शायद नहीं होता, ना सुना था ना देखा था, पर देखते ही आकर्षित मन जो है पिक्चर देखने की तरफ चला गया और कृष्ण कथा, भगवान कौन है, वाई बैड थिंग्स हैपन गुड पीपल सब दिमाग से वॉश हो गए। तो ये जो इंद्र तृप्ति के पदार्थ हैं, आप पार्टी में गए, घर से प्लान करके गए, भाई वहां कुछ नहीं खाना है, वहां तो प्याज लहसुन वाला होता है सब, ये सब तो कुछ खाना नहीं मेरे को वहां पर। वहां जाते ही देखा कोई भक्त तो नहीं है आसपास, कोई है तो नहीं, अच्छा अच्छा यहां तो कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं दिखाई दे रहा, चलो आज खा लेते हैं, किसी को क्या पता लगेगा। क्यों? कि उस जगह के आकर्षण ने आपको कंपेल किया है। आपने सुना यार पनीर बड़ा स्वाद था, बहुत बढ़िया दाल मखनी बनी हुई थी, जैसी कान में आवाज गई तो आपके अंदर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का बीज फूट रहा था, पनप रहा था, वो दब गया कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, और आप आकर्षित हो गए जिह्वा के रस के प्रति। जिह्वा के रस के प्रति आकर्षित हो गए, आज खा लेते हैं कल नहीं खाएंगे, कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने देखा तो नहीं, किसी को पता तो नहीं लगेगा, चोरी से खा लेते हैं, ये नहीं देखते कि भगवान देख रहे हैं। तो हर जगह भगवान हर जगह है, इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। एक छोटी सी आपको 2 मिनट के लिए कथा सुनाता हूं। हम लोग कई बार कहते हैं कि मानसिक पूजा करनी चाहिए, मन से पूजा करनी चाहिए, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मन से पूजा करते। एक हम कथा पढ़ते हैं, बहुत बार मंदिर में सुनी है कि एक भक्त जो है उसके पास धन नहीं था, लक्ष्मी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो खर्चा नहीं कर सकता था, तो मन से भगवान को भोग लगाता था, मन से पूजा करता था। तो उसने एक दिन देखा खीर बनी है, खीर लगा कहीं गर्म तो नहीं है, तो उंगली डाली तो उंगली जल गई। अब इसी का एक और मॉडिफिकेशन है कि एक भक्त से यह कहा गया कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, तो तुम 12 महीने जो है भगवान की मन से पूजा करो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो लालच में आ गया भगवान के दर्शन के और उसने रोज जो है मन से पूजा करनी शुरू कर दी डेली। पैसा था नहीं गरीब आदमी के पास, तो पैसा था नहीं तो कुछ ला नहीं सकता था, तो मन से सारी पूजा करता था, मन से ही भगवान को खिलाता था, मन से ही सब कुछ करता था और अपनी पूजा में बिल्कुल रेगुलर रहा, साधना में कोई कमी नहीं थी। अब जब 12 महीने होने वाले थे तो एक दिन जो है उसने भगवान के लिए शरबत बनाया, मन से शरबत बनाया, लोटा लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चीनी डाली, उसमें नींबू डाला, उसको घोल लाया। तो उसके मन में बात आई कि आज ना चीनी कुछ ज्यादा हो गई है, मैंने कुछ चीनी ज्यादा डाल दी है, तो मैं थोड़ी चीनी निकाल लेता हूं, मैं थोड़ी चीनी निकाल लेता हूं, कल काम आएगी। तो मन से जो है ना लोटे के अंदर जो चीनी डाली थी ना उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तो तेरा कौन सा खर्चा हो रहा है تو نے کون سا خرچہ کیا ہے کہ تو زیادہ چینی ہو گئی تو اس کو نکال لے واپس. یا تو خرچہ کیا ہوتا پھر تو ٹھیک تھا، چار چمچ واپس نکال لی، کل کام آ جائے گی. تو نے کون سا خرچہ کیا کہ چینی زیادہ ہو گئی ہے، چینی نکال لیتا ہوں. تو جو آکرشن ہے، آکرشن من سے جب آکرشن ہوتا ہے تو اس آکرشن کے پرتی کارن کیا ہے؟ کارن ہے وشے وستو. من کو جب تک آپ امپریشن نہیں دیں گے، آنکھوں دوارا دیکھا ہوا، کان دوارا سنا ہوا، ناک دوارا سونگا ہوا، جیوا دوارا رس لیا ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑھیا چیز ہے، مجھے اس کے پرتی آکرشت ہونا ہے، تب تک آپ کا اس کے پرتی آکرشن نہیں ہوگا. من تب تک اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کرنے دے گا اس آکرشن کو. آکرشن تبھی ہوگا جب آپ کو اندر وشوں کے جو اندر وشے ہیں انہوں نے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیا ہے، ڈسٹرب کر دیا ہے، آکرشت کر دیا. تو یہاں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہتتو ارتھات جو آپ کے 24 تتو ہیں جو مہتتو کے اندر آتے ہیں، جو سارے کے سارے تتو، اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اہنکار. اہنکار شبد یہاں اسپیشلی استعمال کیا گیا. تو اہنکار کیا ہے؟ وٹ از اہنکار؟ سادھارن بھاشا میں اہنکار کیا ہے؟ سادھارن بھاشا میں اہنکار کا مطلب ہے کہ شریر کو آتما سے ابھن مان لینا. میں شریر ہوں، فالس ایگو ہے. شریر میرا ہے، یہ فالس ایگو ہے. اپنے آپ کو شریر کے ساتھ اسے ستھاپت کر لینا ہے کہ دونوں میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پانا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کرتا پن کا ابھیمان آ جاتا کہ آئی ایم دا ڈوئر، میں نے کیا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے میں یہ کرنے کی شکتی ہے، آئی ایم سو پاورفل. کہتے ہیں نا بڑا اہنکار ہے اس کو، بڑا ابھیمان ہے اپنے اوپر، بڑا اہنکار ہے، کیا میں کر سکتا ہوں. مینس آپ جو ہے بھگوان کی سپریمیسی کو بھلا کر اپنی سپریمیسی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. بھگوان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ نہ کر کے اپنی سپریمیسی کو آپ ستھاپت کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا سپریم. تو یہاں پہ یہی چرچا ہو رہی ہے کہ آپ کو جب یہ سات چیزیں ہیں جس میں مہتتو، اہنکار اور پنچ تنماترائیں. تنماترا کا ارتھ ہے وشے، مطلب اندریوں کے وشے جو ہیں ان کو تنماترا کہا جاتا. یہ سب جو ہے ڈینجرس ہے، اور یہی ڈینجر آپ کو بھگوت دھام جانے میں روکتا، آپ نہیں جا پاتے. جب تک آپ بھگوان کو کرتا ایکسپٹ نہیں کریں گے، اپنے کو کرتا مانیں گے، اہنکار سماپت نہیں ہوگا، تو آپ بھگوان کے دھام نہیں جا سکتے. یہی چرچا یہاں کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا، اب جو ہے بہت بڑھیا پرپٹ لکھا ہے پربھوپاد جی نے، اس کے انواد کے اندر بھی بات آ رہی ہے کہ سارے کے سارے پدارتھ اپنے کرم میں رہنے چاہیے. کرم کا مطلب یہ ہے کہ سسٹمیٹیکلی سب کو اپنا کام کرنا. اب سسٹمیٹیکلی کام کرنے کے اندر کیا ہے؟ وشے وستو کام نہیں کر رہی ہے، وہ آکرشن پیدا کر رہی ہے آپ کی گیان کی اندریوں کا. تو اندریوں کو اپنے کرم میں رہنا ہے کہ اگر کوئی ایسی وستو دکھائی دیتی ہے تو اس کے پرتی آکرشت نہ ہو کے اس کو اگنور کر دینا. اگنور، اٹس ناٹ مائی، میرا کیک نہیں ہے، اٹس ناٹ مائی کپ، مجھے نہیں چاہیے. اگنورنس اس وشے وستو کے پرتی. اس کے بعد اس کے اوپر آتا ہے من. جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو من کے اندر اگر کوئی بھاو اٹھتا بھی ہے تو آپ کو اس بھاو کو دبا دینا ہے اور اپنے من کو بھگوان کے چرن کملوں میں ستھاپت کر دینا ہے. یس، میرا تو دھیان وہیں جانا چاہیے، کہاں چلا گیا؟ کٹ بیک ٹو پیولین. پھر گیا، کٹ بیک ٹو پیولین. مطلب آپ نے اس کٹ کو کر دینا ہے، یہ نہیں کہ اسی طرف چلنا شروع کر دیا. تو من کو وش میں کرنا، مطلب من سے سمست کرموں کا پریتیاگ. اور من کے اوپر ہے بدھی. بدھی کا مطلب ہے آپ کو اپنے ویویک کا استعمال کرنا ہے. ویویک مینس آرٹ آف ڈسکریمنیشن. ستیہ کو اسطیہ سے، कर्तव्य को अकर्तव्य से डिफरेंशिएट कर लेना, मेरी ड्यूटी क्या है, सत्य क्या है, ये सब को डिफरेंशिएट करके फिर आपको जो है बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को भी कंट्रोल करना। जब आप इतना काम कर लेंगे फिर अगर कहीं पे हल्का सा भी अहम भाव आता है तो उस अहम भाव को भी कट करना, नो इट्स नॉट मी, मैं थोड़ा हूं, तो भगवान की कृपा भाई वो करवा रहे, मैं कौन हूं करने वाला। वो ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली आपको फॉल्स ईगो को त्यागना है। जब तक ये फॉल्स ईगो तक अपने क्रम में नहीं आएंगी चीजें तब तक आप जो है भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यू हैव टू अचीव गॉड, यू हैव टू अचीव गोलोक धाम। उसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको इन सब चीजों को क्रम में रखना है, मींस सिस्टमेटिकली यूज करना है फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉर फॉर सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने लिए नहीं। आपको भोग परायण नहीं बनना है, इंद्रिय परायण नहीं बनना है, इंद्रिय राम नहीं बनना है, आपको बनना है भगवान परायण, भगवत परायण। जिस दिन आप ये फार्मूला सीख जाएंगे, जिस दिन इस फार्मूले पे चलना शुरू कर देंगे, उस दिन लाइफ में जो है एक ड्रेस्टिक चेंज आ जाएगा, एक ड्रेस्टिक चेंज आ जाएगा एंड यू विल बी कंफर्टेबल। आपको उस आनंद की प्राप्ति होगी जो आपने आनंद कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस सारे आनंद की बिगिनिंग कहां से होती है, वेयर इज दी बिगिनिंग, इसका ओरिजिन कहां से होता है, इसकी बिगिनिंग कहां है। इस सारे आनंद को प्राप्त करने के लिए जो शुरुआत है, शुरुआत होती है डिवोटी एसोसिएशन, भक्त के संग से। जब तक आप भक्तों का संग नहीं करेंगे, जब तक आप भक्तों के साथ नहीं चलेंगे, जब तक आप भक्तों की क्वालिटीज अपने अंदर इनकल्टेट नहीं करेंगे, अपने अंदर इम्बाइब नहीं करेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक आप इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। भक्तों का संग अति 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 आवश्यक है। दैट इज द रूट कॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।